डेनियल की पुस्तक संख्या 4 तेज गिरावट।
हम लैव्य व्यवस्था अध्याय 26 के साथ समय पर, जैसा कि दानियल की पुस्तक में प्रस्तुत है, चर्चा कर रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सात समय की भविष्यवाणी संबंधी विशेषताओं में से एक ये है कि ये उस ठोकर के पत्थर का प्रतिनिधित्व करता है जिसे भवन निर्माताओं ने ठुकराया। मैं पवित्र शास्त्र में प्रस्तुत उस ठोकर के पत्थर को ऐसे सत्य के रूप में परिभाषित कर रहा हूं जो देखा जा सकता है पर देखा नहीं जाता। जो इसे देखते हैं उनके लिए वो अनमोल है, पर जो नहीं देखते उनके लिए वो केवल ठोकर का कारण ही नहीं बल्कि वो पत्थर भी है जो उन्हें पीस कर चूर्ण कर देता है।
जब मसीह ने उस पत्थर का उल्लेख किया जिसे राजमिस्त्रियों ने ठुकरा दिया था, तो उन्होंने बताया कि वही कोने का पत्थर कोने का सिर बन जाएगा। पवित्र शास्त्र में ठुकराए हुए पत्थर का संदेश हमेशा इस बात से संबंधित होता है कि परमेश्वर पूर्ववाचा के लोगों को छोड़ देता है और उसी समय परमेश्वर उन लोगों के साथ वाचा बांधता है जो पहले परमेश्वर के लोग नहीं थे।
यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने पवित्र शास्त्रों में कभी नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने ठुकराया वही कोने का सिरा बन गया। ये प्रभु की ओर से हुआ है और ये हमारी आंखों में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और असे ऐसी जाति को दिया जाएगा जो उसके फल उत्पन्न करेगी। और जो कोई इस पत्थर पर गिरेगा वो चूर चूर हो जाएगा, पर जिस पर ये गिरेगा उसे पीसकर चूर कर देगा। मत्ती 21:42।
पवित्र स्वर्गदूतों ने जिन समय की भविष्यवाणियों ने जिन समय की ओर विलियम मिलर का मार्गदर्शन किया, उनमें पहली थी लैव्य व्यवस्था 26:7 समय। लाओदिकियाई एडवेंटवाद ने मिलर की खोजों में सबसे पहली को अस्वीकार करके उन बुनियादी सत्यों को ढहाने की प्रक्रिया शुरू की जिन्हें प्रभु ने मिलर की सेवकाई के माध्यम से समेकित किया था। निस्संदेह किसी पवित्र नींव का कोई भी भविष्य सूचक निरूपण मसीह का ही निरूपण है जो वह पत्थर हैं। इसलिए 1833 में सात समय का अस्वीकार न केवल बुनियादी सत्यों को अस्वीकार करने की प्रक्रिया की शुरुआत को चिन्हित करता है बल्कि ये मसीह के अस्वीकार का भी प्रतिनिधित्व करता है। जैसे अस्वीकृत पत्थर के विषय में मसीह की गवाही है, वैसे ही पत्रस भी ये बताता है कि आधारशिला से जुड़ी भविष्यवाणियों में से एक ये है कि वो अंततः कोने का सिरा बन जाएगी।
इसलिए पवित्र शास्त्र में भी लिखा है, देखो मैं सियोन में एक कोने का मुख्य पत्थर रखता हूँ, चुना हुआ बहुमूल्य, और जो उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। अतः तुम जो विश्वास करते हो तुम्हारे लिए वो बहुमूल्य है, परंतु जो अवज्ञाकारी हैं वही पत्थर जिसे राजमिस्त्रियों ने अस्वीकार किया था कोने का सिरा बना दिया गया है, और वो ठोकर का पत्थर तथा ठेस की चट्टान ठहरा उनके लिए जो वचन पर ठोकर खाते हैं क्योंकि वे अवज्ञाकारी हैं, और इसीलिए वे ठहराए भी गए थे। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजकीय याजकता, पवित्र जाति, एक विशेष प्रजा हो, ताकि तुम उसके गुण प्रकट करो जिसने तुम्हें अंधकार से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, जो पहले कोई प्रजा न थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो गए हो, जिन्होंने पहले दया नहीं पाई थी पर अब दया पाई है। 1 पत्रस 2:6-8।
एडवेंटवाद के प्रारंभ में जो आधारशिला थी वही कोने का सिरा हो जाती है। यशाया इस विषय के मसीह और पत्रस से सहमत है और वो उस आधारशिला का उपयोग उन वाचा के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए करता है जिन्हें नई वाचा की प्रजा के लिए दरकिनार किया जा रहा है। अपनी गवाही में वो उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसने मृत्यु के साथ वाचा बांधी है और जिसने एक झूठ को स्वीकार किया है। जो झूठ वे स्वीकार करते हैं वही वो झूठ है जिसे पौलुस इस रूप में पहचानता है कि वो मृत्यु के साथ वाचा बांधने वालों पर बलवान भ्रम लाता है क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया।
इसलिए हे ठट्ठा करने वालों, जो यरूशलेम में स्थित इस प्रजा पर शासन करते हो, प्रभु का वचन सुनो। क्योंकि तुमने कहा है, हमने मृत्यु के साथ वाचा बांधी है और अधोलोक के साथ समझौता किया है, जब वो उमड़ती हुई ताड़ना होकर गुजरेगी तो वो हम तक न पहुंचेगी, क्योंकि हमने झूठ को अपना शरण स्थान बना लिया है और मिथ्या के नीचे हमने अपने आप को छिपा लिया है। इसलिए प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, देखो मैं सियोन में नींव के लिए एक पत्थर रखता हूं, परखा हुआ पत्थर, बहुमूल्य कोने का पत्थर, दृढ़ नींव। जो उस पर विश्वास करेगा वो घबराकर जल्दबाजी न करेगा। मैं न्याय को नाप की रेखा और धर्म को सीसे की डोरी ठहराऊंगा, और ओले झूठ के शरण स्थान को उड़ा देंगे, और जल छिपने की जगह को उमड़कर बहा ले जाएगा, और तुम्हारी मृत्यु के साथ की वाचा रद्द कर दी जाएगी, और अधोलोक के साथ का तुम्हारा समझौता ठहर न सकेगा। जब वो उमड़ती हुई ताड़ना होकर गुजरेगी तब तुम उससे कुचले जाओगे। यशाया 28:5 टिकने तब तत्।
सात समय को झूठ की परतों के नीचे छिपा दिया गया है, और जब परमेश्वर अपने पूर्व वाचा के लोगों को छोड़कर 144,000 के साथ वाचा में प्रवेश करते हैं, तब वो पत्थर जो पहले अस्वीकार किया गया कोने का पत्थर था ऊपर उठकर कोने का शीश बन जाएगा। जो इस सत्य को समझते हैं उनके लिए ये अनमोल है, और जो नहीं समझते उनके लिए कोने का शीर्ष बनने वाला वही पत्थर न केवल उन्हें कुचल देता है बल्कि रूपक रूप में उनकी समाधि शिला भी बन जाता है। दानियेल की पुस्तक में 8:19 में हमें क्रोध का अंतिम अंत मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि क्रोध का प्रथम अंत भी होना चाहिए। 677 ईसा पूर्व से 22 अक्टूबर 1894 तक का समय वो अवधि दर्शाता है जब पवित्र स्थान और सेना को रौंदा जाता रहा, परंतु दानियेल 11:36 के अनुसार पपाई सत्ता को तब तक फलना फूलना था जब तक कि वो क्रोध पूरा न हो जाए। यदि 8 में क्रोध का अंत किसी समयाविधि की समाप्ति का प्रतिनिधित्व करता है, तो 11 में क्रोध का अंत भी किसी समयाविधि की समाप्ति का प्रतिनिधित्व करता है। बाइबल यही स्पष्ट रूप से सिखाती है, यद्यपि इस सत्य को उन लोगों ने झूठ से ढंक दिया है जिन्होंने मृत्यु के साथ वाचा बांधी है। दोनों प्रकोपों की समाप्ति एक ही समयावधि के अंत को दर्शाती है, क्योंकि दोनों ही तितर बितर, बंधुआई और दासत्व के 2520 वर्षों वाले उसी शाप की पूर्ति थे। उत्तरी राज्य ने सबसे पहले सात समय के तितर बितर, बंधुआई और दासत्व को सहा, जब 720 ईसा पूर्व में अशूर के राजा ने उन्हें बंदी बना लिया। दक्षिणी राज्य ने 766 ईसा पूर्व में वही दशा भोगी। यिर्मयाह इस तथ्य की पुष्टि करता है,
इसराइल एक बिखरी हुई भेड़ है, सिंहों ने उसे खदेड़ दिया है। पहले अशूर के राजा ने उसे निगल लिया है, और अंत में इस बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियां तोड़ दी हैं। यिर्मयाह 50:70।
यिर्मयाह एक क्रमिक न्याय की पहचान कर रहा है। अश्शूरियों ने 733 ईसा पूर्व में उत्तरी राज्य को समाप्त कर दिया, फिर 757 ईसा पूर्व में वे मनशे को अपनी राजधानी नगर बाबेल ले गए, फिर नबुकदनेस्सर यहोयाकीम को बंदी बना लेता है, और इस प्रकार 606 ईसा पूर्व में 70 वर्षों की बंधुआई की शुरुआत चिन्हित होती है। फिर नबुकदनेस्सर सिदकिय्याह को पकड़ लेता है और 538 ईसा पूर्व में यरूशलेम को नष्ट कर देता है। दक्षिणी राज्य को चेतावनी दी गई थी कि यदि वे अपने विद्रोह को जारी रखते तो उन्हें उत्तरी राज्य जैसा ही भाग्य भोगना पड़ेगा। उत्तरी राज्य का न्याय दक्षिणी राज्य पर लागू किया जाएगा, और उस न्याय का प्रतीक एक डोरी थी जिसे यहूदा पर ताना जाना था। यशाया की गवाही में इसे केवल डोरी कहा गया है, पर अगले खंड में ये डोरी सामरिया की डोरी है।
इस कारण इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति ला रहा हूं कि जो कोई उसके विषय में सुनेगा उसके दोनों कान झंझना उठेंगे, और मैं यरूशलेम पर सामरिया की नापने की डोरी और अहाब के घराने का सीसा तानूं, और मैं यरूशलेम को ऐसे पोंछ डालूं जैसे कोई थाली पोंछता है, उसे पोंछकर उल्टा कर देता है, और मैं अपनी विरासत के बचे हुओं को त्याग दूंगा और उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ में सौंप दूंगा, और वे अपने सब शत्रुओं के लिए शिकार और लूट बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी दृष्टि में बुरा किया है और मुझे क्रोध दिलाया है जिस दिन से उनके पूर्वज मिस्र से निकले आज तक। 2 राजा 21:12-15।
अभी उद्धृत पदों में 2 भविष्यवाणी संबंधी अभिव्यक्तियां हैं जिन पर विचार करना आवश्यक है। पहली है कानों की झंझनाहट और दूसरी है साहुल। इन पदों में समरिया की रेखा को आहाब के घराने के साहुल के रूप में भी पहचाना गया है। रेखा और साहुल न्याय के ऐसे उपकरण हैं जो निर्माण प्रक्रिया में प्रयुक्त होते हैं। इन पदों में वे ये दर्शाते हैं कि जिस प्रकार का न्याय उत्तरी राज्य पर, जिसे समरिया और आहाब के घराने द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है, किया गया था, वही यहूदा और यरूशलेम पर भी लाया जाएगा। जब ये चेतावनी दी गई, तब इसराइल का उत्तरी राज्य पहले ही आक्रांत, विजित, नष्ट किया जा चुका था और उसके लोग दासत्व में ले जाए गए थे। परमेश्वर के न्याय का संदेश चेतावनी सुनने वालों के कानों में झंझनाहट उत्पन्न करता है। शास्त्रों में साहुल और कानों की झंझनाहट दोनों का उल्लेख 3-3 बार मिलता है। प्रत्येक प्रसंग में वे परमेश्वर के अपने ही लोगों के विरुद्ध उसके रोष का प्रतिनिधित्व करते हैं।
और प्रभु आया, खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, शमूएल, शमूएल। तब शमूएल ने उत्तर दिया, बोल, चूंकि तेरा दास सुन रहा है। तब प्रभु ने शमूएल से कहा, देख, मैं इज़राइल में ऐसा काम करूंगा कि जिसे सुनकर हर एक के दोनों कान झंझना उठेंगे। उस दिन मैं ईली के विरुद्ध वे सब बातें पूरी करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कही हैं। जब मैं आरंभ करूंगा, तब मैं समाप्त भी कर दूंगा। 1 शमूएल 3:10। तबड़ा
एली के घराने का पतन वो भविष्यवाणी है जिसे जो कोई सुने उसके दोनों कान झंझना उठें। शमूएल के समय में कानों का झंझनाना एली के घराने के हटाए जाने का प्रतीक है। शमूएल को दी गई भविष्यवाणी की पूर्ति एली के घराने के पतन और शमूएल के भविष्यद्वक्ता के रूप में स्थापना में हुई। शमूएल उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो, जैसा पत्रस कहता है, पहले परमेश्वर के लोग न थे पर अब हैं। क्योंकि जब शमूएल को भविष्यद्वक्ता के रूप में स्थापित किया गया, तब एली का घराना नष्ट कर दिया गया। यिर्मयाह भी यरूशलेम के नेतृत्व के विरुद्ध ऐसा न्याय घोषित करता है जिससे कान झंझना उठे।
और कहो, हे यहूदा के राजाओं और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा, इसराइल का परमेश्वर यों कहता है, देखो, मैं इस स्थान पर ऐसी विपत्ति लाऊंगा कि जो कोई उसे सुनेगा उसके कान झंझना उठेंगे। यिर्मयाह 19:3।
कानों में सनसनाहट के तीनों संदर्भ उस वाचा जन से जुड़े हैं जिन्होंने मृत्यु के साथ वाचा बांधी है, और उसके बाद उन पर आक्रमण हुआ, वे विजित हुए, नष्ट कर दिए गए, तितर बितर कर दिए गए और दासत्व में ले जाए गए। कानों की ये सनसनाहट परमेश्वर के रोष के न्याय का प्रतीक है, और उस न्याय का ये प्रतीक शास्त्रों में प्लमिट शब्द के साथ 3 बार भी प्रस्तुत किया गया है। हम इसे पहले ही 2 राजा और यशाया में पढ़ चुके हैं, लेकिन शास्त्रों में प्लमिट का एक और उल्लेख है, और उस उल्लेख में प्लमिट शब्द पहले 2 संदर्भों से भिन्न एक हिब्रू शब्द से अनुदित है।
और वो स्वर्गदूत जो मुझसे बातें करता था फिर आया और मुझे जगाया जैसे कोई मनुष्य अपनी नींद से जगाया जाता है, और उसने मुझसे कहा, तू क्या देखता है? मैंने कहा, मैंने देखा है कि देखो, सोने का एक दीपदान है जिसकी चोटी पर एक कटोरा है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं, और ऊपर उन 7 दीपकों के लिए 7 नलियां, और उसके पास 2 जैतून के पेड़ हैं, एक कटोरे के दाहिने ओर और दूसरा उसके बाएं ओर। तब मैंने उत्तर देकर उस स्वर्गदूत से जो मुझसे बातें करता था कहा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? तब उस स्वर्गदूत ने जो मुझसे बातें करता था उत्तर दिया और मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु। तब उसने उत्तर देकर मुझसे कहा, ये वचन जरुब्बाबेल के लिए यहोवा की ओर से है, न तो पराक्रम से, न ही शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा से। ऐसा सेनाओं का यहोवा कहता है, हे बड़े पहाड़, तू कौन है? जरुब्बाबेल के सामने तू समतल भूमि बन जाएगा, और वो उसके शिरोपत्थर को जय जयकार के साथ निकालेगा, ये पुकारते हुए, अनुग्रह अनुग्रह उस पर हो। फिर यहोवा का वचन मुझ पर आया कि जरुब्बाबेल के हाथों ने इस घर की नींव डाली है, उसके ही हाथ इसे पूरा भी करेंगे, और तब तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटे आरम के दिन को तुच्छ जाना। वे तो आनंद करेंगे और जरुब्बाबेल के हाथ में सीसे की डोरी को उन सातों के साथ देखेंगे। वे यहोवा की आँखें हैं जो सारी पृथ्वी में इधर उधर फिरती रहती हैं। तब मैंने उत्तर दिया और उससे कहा, इस दीपदान के दाहिनी ओर और बाईं ओर के ये दो जैतून के पेड़ क्या हैं? और मैंने फिर से उत्तर दिया और उससे कहा, वे दो जैतून की डालियां क्या हैं जो दो सुनहरी नलियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती हैं? तब उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या हैं? मैंने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु। तब उसने कहा, ये दो अभिषिक्त है जो संपूर्ण पृथ्वी के प्रभु के पास खड़े रहते हैं। जकर्याह 4:22 उसके 2।
द्वितीय राजाओं और यशाया 28 में प्लमेट के रूप में जिसका अनुवाद किया गया है वो शब्द मिशकाल है और उसका अर्थ एक भार होता है। दोनों अंशों में डोरी में एक भार प्लमेट जोड़े जाने वाला था। भार वही है जो तराजू में प्रयोग होता है और न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। भार लगी डोरी न्याय की डोरी है। समारिया की रेखा 7 काल अर्थात 257 सीज वर्षों की अवधि थी। यही अवधि जो उत्तरी राज्य पर लाई गई थी दक्षिणी राज्य पर भी रखी जाने वाली थी। इन दोनों में से किसी भी रेखा का अंत दानियल की पुस्तक में या तो अंतिम प्रकोप के अंत के रूप में या प्रथम प्रकोप के अंत के रूप में पहचाना गया है। ये अवधि दानियल 9 उस समय के रूप में दर्शाई गई है जब यरूशलेम और सेना को मूर्ति पूजा और पापलवाद की दो उजाड़ने वाली शक्तियों द्वारा रौंदा जाना था। दोनों अवधियों की शुरुआत तब होती जब उनकी उनकी राजधानियों पर आक्रमण किया जाता, उन्हें जीत कर नष्ट कर दिया जाता और उनके नागरिकों को दासत्व में ले जाया जाता। लेकिन जकर्याह में प्लमेट शब्द दो इब्रानी शब्दों के संयोजन से बना है। पहला शब्द ईबन है, इसका अर्थ निर्माण करना है और ये पत्थर का भी अर्थ देता है, अर्थात निर्माण का पत्थर। फिर इस शब्द को इब्रानी शब्द बेडाइल के साथ जोड़ा गया है जिसका अर्थ विभाजित करना या अलग करना है। जकर्याह में प्लमेट वो पत्थर है जिस पर निर्माण किया जाता है और जो अलगाव व विभाजन उत्पन्न करता है। ये विभाजन उपासकों की दो श्रेणियों के बीच है। एक श्रेणी जो पत्थर को देखकर आनंदित होती है, उसे अपने कोने का मुख्य पत्थर बनाती है और उस पर निर्माण करती है, और दूसरी जो उसे देखती ही नहीं, उसे अस्वीकार करती है, उस पर ठोकर खाती है और अंततः उसी से कुचली जाती है, जो तब उनके लिए शिरोशिला या समाधि शिला बन जाता है। एक श्रेणी जीवन से वाचा करती है, दूसरी मृत्यु की वाचा करती है। जकर्याह के इतिहास में प्राचीन इसराइल यरूशलेम का पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना करने के लिए अभी अभी बाबुल से निकलकर आया था। जरुब्बाबेल को राज्यपाल नियुक्त किया गया और उसे कार्य की देखरेख करनी थी। उसने काम की शुरुआत में नींव का पत्थर रखा और काम के अंत में शीश पत्थर या समापन पत्थर स्थापित किया। जरुब्बाबेल का अर्थ है बाबुल की संतान। सारी भविष्यवाणियां अंतिम दिनों की ओर इंगित करती हैं और जरुब्बाबेल का नाम उस समय पहले स्वर्गदूत के संदेश के इतिहास का प्रतीक है जब नींव का पत्थर रखा गया था, और उसका नाम उस समय तीसरे स्वर्गदूत के संदेश का भी प्रतीक है जब शीर्ष पत्थर या समापन पत्थर रखा जाता है। पहले आंदोलन में हो या दूसरे आंदोलन में, पवित्र आत्मा के उंडेले जाने के प्रकटीकरण को जरुब्बाबेल के नाम द्वारा दर्शाया गया है, क्योंकि ये उस संदेश का प्रतिनिधित्व करता है जो बाबुल की संतान की अंतिम पीढ़ी को बाहर आने के लिए बुलाता है। ये मध्य रात्रि के आह्वान के उस संदेश का प्रतिनिधित्व करता है जो पहले आंदोलन में हुआ था और जो प्रबल पुकार के अंतिम आंदोलन में होने ही वाला है। दो जैतून के पेड़, दो जैतून की डालियां और वे दो अभिषिक्त जो उन पात्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें दो सुनहरी नलियां तेल उंडेलती है।
संपूर्ण पृथ्वी के प्रभु के समीप खड़े हुए अभिषिक्त जन उस पद पर हैं जो कभी शैतान को आच्छादन करने वाले करूप के रूप में दिया गया था। अपने सिंहासन के चारों ओर स्थित पवित्र प्राणियों के द्वारा प्रभु पृथ्वी के निवासियों के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखते हैं। स्वर्ण तेल उस अनुग्रह का प्रतीक है जिसके द्वारा परमेश्वर विश्वासियों के दीपकों में निरंतर पूर्ति करता है ताकि वे टिमटिमाकर बुझ न जाएं। यदि स्वर्ग से परमेश्वर की आत्मा के संदेशों के माध्यम से यह पवित्र तेल न उंडेला जाता तो बुराई की शक्तियां मनुष्यों पर संपूर्ण नियंत्रण कर लेती।
जब हम वे संदेश स्वीकार नहीं करते जो वो हमें भेजता है तब परमेश्वर का अनादर होता है। इस प्रकार हम उस स्वर्ण तेल को अस्वीकार कर देते हैं जिसे वो हमारे प्राणों में इसलिए उंडेलना चाहता है कि उसे अंधकार में पड़े हुओं तक पहुंचाया जाए। जब ये पुकार सुनाई देगी, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे मिलने चलो, तो जिन्होंने पवित्र तेल प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने अपने रोम दहों में मसीही के अनुग्रह को नहीं संजोया, वे मूर्ख कुआरियों के समान पाएंगे कि वे अपने प्रभु से मिलने के लिए तैयार नहीं हैं। उनके अपने भीतर वो सामर्थ्य नहीं है कि वे वो तेल प्राप्त कर सकें और उनके जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। परंतु यदि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए मांगा जाए, यदि हम मूसा के समान विनती करें, मुझे अपनी महिमा दिखा, तो परमेश्वर का प्रेम हमारे रोंधों में उंडेल दिया जाएगा। स्वर्ण नलिकाओं के माध्यम से स्वर्ण तेल हम तक पहुंचाया जाएगा, ना तो शक्ति से, न पराक्रम से, परंतु मेरी आत्मा से। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है। धर्म के सूर्य की दीप्तिमान किरणों को ग्रहण करके परमेश्वर की संतानें जगत में ज्योतियों के समान चमकती हैं। रिव्यू एंड हेरल्ड, जुलाई 20, 1879।
जकरिया ने बार बार पूछा था कि वे दो जैतून के वृक्ष कौन थे। इस प्रकार दो गवाहों के विभिन्न प्रतीकों की ओर ध्यान आकर्षित किया। सिस्टर व्हाइट दो जैतून के वृक्षों को प्रकाशित वाक्य के 11वां अध्याय के दो गवाहों के रूप में पहचानती है।
दो गवाहों के विषय में भविष्यद्वक्ता आगे ये घोषित करता है, ये पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े दो जैतून के वृक्ष और दो दीप तैदान हैं। 13वां वचन भजनकार ने कहा, दीपकक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। प्रकाशित वाक्य 11:4, भजन संहिता 108:8, ये दो गवाहों पुराने और नए नियम के पवित्र शास्त्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। द ग्रोट कॉन्ट्रोवर्सी 670 थी।
जकरिया ये समझना चाहता था कि ये दो गवाह कौन थे। फ्रांसीसी क्रांति में वे पुराना और नया नियम थे। उन्हें मूसा और एलिया के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें अथाह कुंड से ऊपर आने वाले पशु ने सड़क पर मार डाला। वे फ्यूचर फॉर अमेरिका की सेवकाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे 18 जुलाई 2020 को मार डाला गया था। अध्याय की शुरुआत में जकरिया के जगाए जाने के बाद, जब मृत सूखी हड्डियां एकत्र की जाती हैं पर वे अभी जीवित नहीं हुई हैं, तब गब्रियेल पूछता है, तू क्या देखता है? जकरिया जो उसने देखा है उसका वर्णन करता है और फिर पूछता है, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? गब्रियेल प्रश्न के विषय पर जोर देने के लिए जकरिया के प्रश्न का उत्तर एक प्रश्न से देता है। वो जकरिया से पूछता है, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? तब गब्रियेल उत्तर देता है, ये जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का वचन है, न तो सामर्थ्य से न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा, सेनाओं का यहोवा कहता है। जरुब्बाबेल को दिया गया प्रभु का वचन ये था, न तो सामर्थ्य से न ही पराक्रम से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा। हे बड़े पर्वत, तू कौन है? जरुब्बाबेल के सामने तू समतल हो जाएगा और वो जय जयकार के साथ उसका शीश पत्थर निकालेगा, ये पुकारते हुए, उस पर अनुग्रह, अनुग्रह। प्रांतपाल जरुब्बाबेल उस दूत का प्रतिनिधित्व करता है जो इतिहास के प्रारंभ और अंत में मार्ग तैयार करता है, जिसके सामने पहाड़ समतल मैदान बन जाता है। यशाया उसी दूत के कार्य का वर्णन करता है और कहता है कि वो मरुस्थल में हमारे परमेश्वर के लिए एक राजमार्ग सीधा करेगा और वो हर एक तराई को ऊंचा करेगा, वो हर एक पहाड़ और टीले को भी नीचा करेगा, क्योंकि प्रांतपाल जरुब्बाबेल के सामने बड़ा पहाड़ मैदान हो जाएगा। विलियम मिलर को सात समय का संदेश परमेश्वर ने दिया था। जरुब्बाबेल विलियम मिलर का प्रतिनिधित्व करता है, जिसने सात समय की नींव की शिला रखी, और वो उन हाथों का भी प्रतिनिधित्व करता है जो शीर्ष शिला को जय जयकार करते हुए पुकारते हुए अनुग्रह अनुग्रह उस पर के साथ बाहर लाएंगे। अनुग्रह शब्द के दोहराव से मध्य रात्रि की पुकार के संदेश का प्रतिनिधित्व होता है। जय जयकार वही संदेश दर्शाता है जिसे तीसरे स्वर्गदूत की ऊंची पुकार दर्शाती है, और पुकार मध्य रात्रि की पुकार का प्रतिनिधित्व करती है। पूरा अंश मध्य रात्रि की पुकार के संदेश के विषय में है। ये उन कुमारियों के बारे में है जो प्रकाशित वाक्य 11 की गलियों में मृत्यु की नींद सोई हुई थी, जो मरी हुई सूखी हड्डियों की घाटी से होकर गुजरती हैं। ये मरी हुई सूखी हड्डियों के पुनरुत्थान के बारे में है, और ये सीसा की डोरी की भविष्यवाणी संबंधी भूमिका के बारे में है, जिसे बुद्धिमान कुमारियां देखती हैं और जिससे वे आनंदित होती हैं। तब जकरया कहता है, इसके अलावा का अर्थ है अगले खंड को पिछले खंड पर अधिरोपित करना। ये रेखा पर रेखा के भविष्य सूचक सिद्धांत का संदर्भ है। पिछले संवाद ने आधी रात को परमेश्वर के लोगों के जाग उठने की बात पहचानी, जिनका प्रतिनिधित्व जकरया करता है। पिछले संवाद ने बार बार इस इच्छा पर बल दिया कि अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोग समझे कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 के वे दो गवाह कौन हैं। पिछले संवाद ने ये भी पहचाना कि जरूबाबेल प्रथम आंदोलन के कार्य का और साथ ही अंतिम आंदोलन के कार्य का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें बताया गया कि जरूबाबेल के हाथ, जो मानव शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, नीम का पत्थर और शीर्ष पत्थर रखने वाले थे, परंतु उसके हाथों का कार्य केवल सांत्वनादाता की दैवी शक्ति के द्वारा ही पूरा हुआ है और होता है। इसके बाद हुआ संवाद, जिसे पिछले संवाद के ऊपर रखा जाना है, ये स्पष्ट करता है कि जब जरूबाबेल के हाथ कार्य पूरा कर रहे होंगे, तब अंतिम दिनों में परमेश्वर के लोग जानेंगे कि प्रभु ने भेजा गैब्रियल प्रकाशवाहक की ओर परमेश्वर के लोगों। वे उस स्वर्गीय संप्रेषण प्रक्रिया को पहचानेंगे जो यीशु मसीह के प्रकाशित वाक्य से संबंधित रूप में प्रस्तुत पहली सच्चाई है। जरूबाबेल के संदेश और कार्य को अस्वीकार करना उस संदेश को अस्वीकार करना है जो गैब्रियल से आता है, जिसे उसने मसीह से प्राप्त किया और जिसे मसीह ने आगे चलकर पिता से प्राप्त किया। तब आराधकों के दो वर्ग परिभाषित होते हैं। एक वर्ग छोटी बातों के दिन को तुच्छ जानता है। दूसरा वर्ग तब आनंद करेगा जब वे जरूबाबेल के हाथ में साहुल उन सात के साथ देखेंगे जो यहोवा की आंखें हैं, जो सारी पृथ्वी पर इधर उधर दौड़ती फिरती हैं। जो छोटी बातों के दिन को तुच्छ जानते हैं, वे साहुल द्वारा निरूपित विलियम मिलर के ऐतिहासिक कार्य का तिरस्कार करते हैं। उनकी तुलना उनसे की गई है जो साहुल को जरूबाबेल के हाथ में देखकर आनंदित होते हैं। जकरिया का साहुल वो निर्माण का पत्थर है जो विभाजन उत्पन्न करता है। एक वर्ग साहुल का तिरस्कार करता है क्योंकि वे ये देखने से इनकार करते हैं कि जरूबाबेल के हाथ का साहुल उन सात के साथ है। साहुल के साथ जो सात शब्द है, वही हिब्रानी मुखारी शब्द है जिसका अनुवाद लेव्य व्यवस्था 26 में सात बार किया गया है। तब जकरया इस बात को दोहराता है कि जब वो जागता है तो उसे नहीं पता होता कि वे दो गवाह कौन हैं। इसलिए वो फिर से पूछता है, ये दो जैतून के पेड़ क्या है? वो फिर दोहराता है ये पूछते हुए, ये दो जैतून की डालियां क्या हैं जो दो सुनहरी नलिकाओं के माध्यम से अपने भीतर से सुनहरा तेल उंडेलती हैं? और गैब्रियल प्रश्न पर जोर देते हुए फिर से एक प्रश्न के द्वारा जकरया के प्रश्न का उत्तर देता है, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? जिस पर जकरया उत्तर देता है, नहीं। तब गैब्रियल कहता है, ये दो अभिषिक्त हैं जो सारी पृथ्वी के प्रभु के सम्मुख खड़े हैं। ये अध्याय गब्रियल द्वारा जकरयाह को उसकी नींद से जगाने से आरंभ होता है। इसलिए जकरयाह उन कुवारियों का प्रतिनिधित्व करता है जो आधी रात को जाग उठती हैं, और जब वे कुवारियां जागती हैं तो उन्हें ये समझने का भारी बोझ लिए हुए दिखाया गया है कि प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय के दो गवाह क्या दर्शाते हैं। बाइबल की सभी पुस्तकें आकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में मिलती हैं और उसी में समाप्त होती हैं। सभी भविष्यद्वक्ता एक दूसरे से सहमत है क्योंकि परमेश्वर उलझन के कर्ता नहीं है। सभी भविष्यद्वक्ताओं ने जिन दिनों में वे रहते थे उनकी अपेक्षा अंतिम दिनों के विषय में अधिक कहा है। गैब्रियल अल्फा और ओमेगा के सिद्धांत को इस प्रकार लागू करता है कि वो ये पहचानता है कि जरुब्बाबेल मंदिर के निर्माण के कार्य की शुरुआत भी करेगा और उसका समापन भी। उसके कार्य को आरंभ में नींव का पत्थर रखने और अंत में शीश पत्थर रखने के रूप में दर्शाया गया है। जरुब्बाबेल मिलराइट्स के आंदोलन और फ्यूचर फॉर अमेरिका के आंदोलन का प्रतिनिधित्व करता है। गैब्रियल जकरिया को यह बताता है कि मध्य रात्रि की पुकार का कार्य चाहे पहले स्वर्गदूत के आंदोलन में हो या तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन में पवित्र आत्मा की शक्ति से संपन्न होता है। जब वे सड़क पर मर पड़े थे तब संसार उनके मृत शरीरों पर आनंदित हुआ, पर जब वे उठ खड़े हुए तब संसार डर गया और वे आनंदित हुए। वे इसलिए आनंदित हैं क्योंकि वे जरुब्बाबेल के हाथ में उन सात समयों का तौल पत्थर देखते हैं। वो तौल पत्थर वही पत्थर है जिस पर निर्माण किया जाता है, जो बुद्धिमानों को मूर्खों से अलग करता है। चकरिया वे सात नहीं कहते, वे कहते हैं उन सातों। वे तितर बितर होने के 2520 वर्षों को देखते हैं। सात के रूप में अनुदित शब्द वही है जो लैव्य व्यवस्था 26 में सात गुना के रूप में अनुदित है, और वो दासत्व के शाप का प्रतिनिधित्व करता है जो इसराइल के उत्तरी और दक्षिणी दोनों राज्यों पर लाया गया था। दानियल की पुस्तक उन सातों की पहचान एक प्रथम और एक अंतिम कोप के रूप में करती है। विलियम मिलर द्वारा रखा गया नींव का पत्थर 7 times था, और तीसरे स्वर्गदूत के आंदोलन द्वारा रखा गया शीर्ष पत्थर 7 times है, जो लोग अंतिम दिनों की आधी रात की पुकार के जागरण में those 7 को देखकर आनंदित होते हैं, वे मूल्यवान और निकृष्ट के बीच विभाजन और अलगाव के साक्षी होंगे। मूल्यवान लोग पूर्ण एकता में आते हुए आनंदित होंगे, और निकृष्ट लोगों को बहुत देर से पता चलेगा कि उनके पास वो तेल नहीं है जो 2 सुनहरी नलिकाओं के माध्यम से उतरता आ रहा है। जो सत्य एक वर्ग के लिए आनंद का कारण बनेगा, वही दूसरे वर्ग के लिए ठोकर का पत्थर होगा, यद्यपि वो उन सब के देखने के लिए उपलब्ध था जो देखने के लिए इच्छुक थे। जिस प्रकार आरंभ में 1856 मुंह में जब फिलाडेल्फियाई एडवेंटवाद लाओ दीकियाई एडवेंटवाद में रूपांतरित हुआ, 7 बार एक परीक्षा बन गया था, उसी प्रकार अंत में फिर 7 बार एक परीक्षा है, ठीक वहीं जहां लाओ दीकियाई एडवेंटवाद फिलाडेल्फियाई एडवेंटवाद में रूपांतरित होता है। आरंभ की परीक्षा 1863 में असफल हो गई जब 7 बार के बाइबिलीय सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। जो लोग 2023 में अंत की परीक्षा में असफल होंगे, वे ऐसा उस अनुभव को अस्वीकार करने के कारण करेंगे जिसकी मांग लैव्य व्यवस्था 26 के 7 बार में चिन्हित उपाय करता है। दानियल की पुस्तक के पहले 6 अध्यायों के भविष्य सूचक संदेश पर विचार करने से पहले ये पहचानना महत्वपूर्ण था कि दानियल की पुस्तक 7 काल का पूर्णतः समर्थन करती है, क्योंकि 4 और 5 7 काल के विषय में हैं, और वे प्रकाशित वाक्य 13 के पृथ्वी से आने वाले पशु के 2 सींगों की शुरुआत और समाप्ति की पहचान करते हैं। अगले लेख में हम उन पहले 6 अध्यायों पर विचार शुरू करेंगे।
परमेश्वर से दानियल को जो प्रकाश मिला वो विशेष रूप से इन अंतिम दिनों के लिए दिया गया था। उलाई और हिद्देकेल जो शिनार की महान नदियां हैं के तटों पर उसने जो दर्शन देखे वे अब पूर्ति की प्रक्रिया में हैं, और पूर्व कथित सभी घटनाएं शीघ्र ही घटित होंगी। जब दानियल की भविष्यवाणियां दी गई थीं, तब यहूदी राष्ट्र की परिस्थितियों पर विचार कीजिए। आइए हम बाइबल के अध्ययन के लिए अधिक समय दें। हम वचन को जैसा हमें समझना चाहिए वैसा नहीं समझते। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक एक ऐसे आदेश के साथ आरंभ होती है कि हम उसमें निहित शिक्षा को समझें। परमेश्वर घोषित करते हैं, धन्य है वो जो पढ़ता है और वे जो इस भविष्यवाणी के वचन सुनते हैं और उन बातों का पालन करते हैं जो उसमें लिखी गई हैं, क्योंकि समय निकट है। जब हम एक लोग के रूप में ये समझेंगे कि ये पुस्तक हमारे लिए क्या मायने रखती है, तो हमारे बीच एक महान जागृति दिखाई देगी। इसे खोजने और अध्ययन करने का हमें आदेश दिया गया है, फिर भी हम उन पाठों को पूरी तरह नहीं समझते जो ये सिखाती है। बीते समय में शिक्षकों ने दानियल और रेवलेशन को मुहरबंद पुस्तकें घोषित किया और लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया।
जिस आवरण की कथित रहस्यपूर्णता ने बहुतों को उसे उठाने से रोके रखा था, उसे स्वयं परमेश्वर के हाथ ने अपने वचन के इन भागों से हटा दिया है। स्वयं रेवलेशन नाम ही इस कथन का खंडन करता है कि ये एक मुहरबंद पुस्तक है। रेवलेशन का अर्थ है कि कोई महत्वपूर्ण बात प्रकट की गई है। इस पुस्तक के सत्य इन अंतिम दिनों में जी रहे लोगों को संबोधित हैं। हम पवित्र बातों के पावन स्थल में खड़े हैं, जहां आवरण हट चुका है। हमें बाहर खड़े नहीं रहना है, हमें भीतर प्रवेश करना है। लापरवाह, अनादरपूर्ण विचारों के साथ नहीं, उतावले कदमों से नहीं, बल्कि श्रद्धा और परमेश्वर भय के साथ। हम उस समय के निकट पहुंच रहे हैं जब रेवलेशन की पुस्तक की भविष्यवाणियां पूरी होने वाली हैं। टेस्टिमनीज टू मिनिस्टर्स 173।